ये आख्यातार्थ संख्या का अन्वय किसमें होता है या प्रसंग चल रहा है, तो व्याकरणों के सिद्धांत में आख्यातार्थ संख्या का अन्वय होता है कर्ता में और कर्म में, ये बात पहले आई थी। और उसमें कार्य कारण भाव बताया गया था कि आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधम प्रति आख्यात जन्य कर्त्र कर्मोपस्थितिर हेतु। इसका मतलब था कि आख्यातार्थ संख्या विशेषण वाला बोध तब होता है जब आख्यात से कर्ता और कर्म का उपस्थिति होती है, माने कर्ता और कर्म का बोध होता है। इस तरह का कार्य कारण भाव व्याकरणों के मत में है। अब न्यायिक मत में, न्याय दर्शन के मत में थोड़ा सा जो है ना अलग है। वह क्या है कि नैयायिकादीनाम आख्यातार्थ संख्याया, नैयायिक के मत में आख्यातार्थ जो संख्या है माने तीन का अर्थ जो संख्या है, उस संख्या का प्रथमांतार्थे एवं अन्वयात्, उस संख्या का वो लोग क्या मानते हैं, प्रथमांत अर्थ में अन्वय मानते हैं। तो प्रथमांत अर्थ में अन्वय मानते हैं मतलब ये निकला कि प्रथमांतार्थ विशेष्य होता है और आख्यातार्थ संख्या जो है वह विशेषण होता है, प्रकार होता है। देखिए तो हमारे से अलग हो गया ना, हम लोग क्या मानते थे, कर्ता और कर्म को विशेष्य मानते थे और आख्यातार्थ संख्या को प्रकार मानते थे, विशेषण मानते थे। लेकिन नैयायिकों के यहाँ क्या है, विशेष्य में उल्टा है, विशेष्य उनका है प्रथमांतार्थ और आख्यातार्थ संख्या है प्रकार अर्थात विशेषण। इसको अगर समझने के लिए आप कहेंगे तो जैसे देवदत्त पचति है, तो पचति में जो आख्यातार्थ संख्या है माने ती का अर्थ जो संख्या है एकत्व संख्या, उस एकत्व संख्या का अन्वय किसमें होगा, तो प्रथमांतार्थ में होगा। यहाँ प्रथमांत कौन है, देवदत्त पचति में, देवदत्त जो है यह प्रथमांत है, इसका अर्थ क्या हुआ, देवदत्त। तो देवदत्त अर्थ में संख्या का अन्वय होगा, जबकि हम लोग किस में अन्वय करते थे, देवदत्त पचति अगर कहेंगे तो यहाँ पर ती का जो अर्थ है एकत्व संख्या, उसका अन्वय हम लोग कर्ता अर्थ में करते थे। और ये किस अर्थ में करते हैं, प्रथमांत अर्थ में करते हैं, माने जो जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी रहेगी है उस अर्थ में संख्या का अन्वय होगा, ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं। तो विशेष विशेषण भाव में फर्क हो गया, अंतर हो गया। हम लोग जो है कर्ता कर्म को विशेष मानते हैं और आख्यातार्थ संख्या को विशेषण मानते हैं। नैयायिक लोग प्रथमांतार्थ को विशेष मानते हैं और आख्यातार्थ संख्या को विशेषण मानते हैं। और जब इसमें अंतर हो गया सिद्धांत में, तो कार्य कारण भाव जो बनेगा उसमें भी अंतर होगा। तो क्या अंतर है, तो आगे लिखते हैं आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधे, ये जो है ये तो सेम है पहले की तरह। पहले व्याकरणों ने कहा था ना आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधम प्रति, तो वही चीज यहाँ भी है, आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधे मतलब वही हुआ बोधम प्रति। तो कार्य तो समान है, कारण में अंतर है। उसमें हम लोगों ने कारण में क्या कहा था, आख्यात जन्य कर्त कर्मोपस्थिति हेतु, और इनके मत में क्या है, प्रथमांत पद जन्य उपस्थिति हेतु, माने प्रथमांत पद से जन्य माने होने वाली जो उपस्थिति है माने ज्ञान है, वह हेतु है, कारण है। तो जो विशेष वाला अंश होता है ना वह कारण वाले में जाता है, और जो विशेषण वाला अंश होता है वह कार्य वाले अंश में जाता है। मैंने कहा था ना कि कार्य कारण भाव की जो पंक्ति होती है उसमें दो अंश होते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध जो है वो कार्य वाला अंश होता है और उत्तरार्ध वाला कारण वाला अंश होता है। तो कारण जो है ना वह विशेष जिसको मानेंगे ना वो कारण में आएगा, और विशेषण जिसको मानेंगे वो कार्य में जाएगा। तो हम लोग माने व्याकरण जो है आख्यातार्थ संख्या को विशेषण मानते हैं, तो वह कार्य अंश में गया आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधम प्रति। नैयायिक लोग भी इसको कार्य मानते हैं, तो इसलिए उन्होंने कार्य अंश में रखा आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधे। अब हम लोग विशेष मानते हैं आख्यात जन्य कर्त कर्म की उपस्थिति को, तो वह कारण अंश में बताया गया। ये प्रथमांत पद जन उपस्थिति को कारण मानते हैं। इस तरह से उनके कार्य कारण भाव में, माने न्यायिकों के कार्य कारण भाव में और व्याकरणों के कार्य कारण भाव में ये अंतर है। व्याकरण मत में होगा आख्यात जन्य कर्ति कर्म अति आख्यातात संख्या प्रकारक बोधम प्रति आख्यात जन्य कर्ति कर्म उपस्थिति हेतु, और न्यायिक मत में होगा आख्यातात संख्या प्रकारक बोधे प्रथमांत पद जन्योपस्थिति हेतु। इस तरह से हमारे और उनके कार्य कारण भाव में अंतर है। मुख्य अंतर क्या हुआ? मुख्य अंतर जो है ना, कारण में अंतर है ना, कि हमारे यहाँ आख्यात जन्य कर्त कर्म उपस्थिति कारण है और न्यायी के मत में प्रथमांत पद जन्य उपस्थिति कारण है। और कार्य जो है जबकि दोनों का समान है, हमारा भी समान है संख्या प्रकारक बोध, उनका भी कार्य जो है संख्या प्रकारक बोध है। चलिए, लेकिन इस कार्य कारण भाव में न्यायी के अनुसार जो कार्य कारण भाव है उसमें दोष है। ये हर टाइप के वाक्य में न ये फिट नहीं बैठता है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि संख्या का अन्वय होता है प्रथमांत अर्थ में, लेकिन कई इस तरह के वाक्य हैं जिसमें संख्या का अन्वय प्रथमांत अर्थ में नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, सोपि चंद्र इव मुखम दृश्यते का मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा की तरह मुख देखा जाता है। फिर दूसरा वाक्य है देवदत्तो भुक्त्वा ब्रजति, माने देवदत्त भोजन करके जाता है। अब ये इत्यादि इस तरह के अन्य भी वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में संख्या का अन्वय जो है प्रथमांतार्थ में नहीं होता। अब जैसे पहला वाक्य ले लीजिए, पहला वाक्य क्या है कि चंद्र इव मुखम दृश्यते, इसमें दो प्रथमांत पद है, एक है चंद्रह और दूसरा है मुखम। तो मुखम में तो संख्या का अन्वय होता है, लेकिन चंद्रह जो है प्रथमांतार्थ उसमें जो है संख्या का अन्वय नहीं होता। तो जो आपने कहा कि संख्या का अन्वय हमेशा प्रथमांतार्थ में होता है, वो हमेशा तो नहीं होता है। जैसे चंद्र एवं मुखम दृश्यते में दो प्रथमांत पदार्थ हैं, मुख पदार्थ और चंद्र पदार्थ। तो मुख पदार्थ में तो अन्वय होता है, लेकिन चंद्र पदार्थ में अन्वय नहीं होता। ऐसे ही देवदत्तो भुक्त्वा ब्रजति में दो प्रथमांत पदार्थ हैं, एक है देवदत्त और एक है भुक्त्वा। इसमें देवदत्त जो प्रथमांत अर्थ है उसमें तो संख्या का अन्वय होता है, लेकिन भुक्त्वा जो प्रथमांत अर्थ है इसमें संख्या का अन्वय नहीं होता है। तो आपका जो कार्य कारण भाव है, आप जो कहते हैं कि प्रथमांतार्थ जन्य उपस्थिति हेतु, प्रथमांत पद जन्य उपस्थिति हेतु यह जो कार्य कारण भाव है यह सही नहीं है। यह सही कब होगा? जब हर तरह के वाक्य में ये बात सिद्ध हो जाएगी कि हाँ जी, हर प्रथमांत पदार्थ में संख्या का अन्वय होता है, तभी ये कार्य कारण भाव मान्य होगा। लेकिन ये जो उदाहरण यहाँ दिया गया, चंद्र इव मुखम दृश्यते देवदत्तो भुक्त्वा ब्रजति, इसमें जो है प्रथमांतार्थ जो देवदत्त है और भुक्त्वा है, इस प्रथमांत पदार्थ में संख्या का अन्वय नहीं होता है। इस तरह से आपका कार्य कारण भाव जो है वह सही नहीं है। इस तरह से व्याकरणों ने आपत्ति दी। अब व्याकरणों ने जब आपत्ति दी तो इस आपत्ति को मिटाने के लिए न्यायिक लोग जो है ना, इस कार्य कारण भाव में कुछ और जोर देते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो कहते हैं कि यहाँ पर चंद्र अक्त्वार्थयो हो आख्यातार्थ अनन्वयात। यहाँ जो दो वाक्य थे ना, चंद्र एव मुखम दृश्यते, इसमें चंद्र पदार्थ, और देवदत्तो भुक्त्वा ब्रजति में अक्त्वा पदार्थ। भुक्त्वा में क्त्वा प्रत्यय होता है भुज धातु से। तो चंद्र क्त्वार्थयो हो, माने चंद्र अर्थ जो है वह भी प्रथमांत पदार्थ है, और अक्त्वा का जो अर्थ है वह भी प्रथमांत पदार्थ है। ये दोनों जो हैं इसका आख्यातार्थ में अन्वय नहीं होता, तिंग के अर्थ में अन्वय नहीं होता। तो किसमें, तो सवाल होगा कि इसका किसमें अन्वय होता है? तो इसका अन्वय जो है चंद्र जो प्रथमांत पदार्थ है, इसका इब पदार्थ में अन्वय होता है। चंद्र इब मुखम दृश्यते, तो चंद्र पदार्थ का किस्म पदार्थ में अन्वय हुआ? इब पदार्थ में, आख्यातार्थ में अन्वय नहीं हुआ। ऐसे ही देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति जो है, इसमें भुक्त्वा जो प्रथमांत पदार्थ है इसका अन्वय किसमें होता है, तो व्रजति क्रिया में अन्वय होता है। ठीक है, व्रजति क्रिया के विशेषण बनाने के तात्पर्य से ही जो है भुक्त्वा प्रथमांत को रखा गया। तो इस तरह से मत आख्यातार्थ में अन्वय नहीं होता, तो हम जो मत न्यायिक लोग कहते हैं कि हमारा जो ये कार्य कारण भाव है कि आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधे प्रथमांत पद जन्योपस्थिति हेतु, यह कार्य कारण भाव वहाँ के लिए है जहाँ पर कि प्रथमांत पदार्थ का अन्वय आख्यातार्थ में हुआ करता है, और जहाँ पर प्रथमांत पदार्थ का आख्यातार्थ में अन्वय नहीं होता वहाँ के लिए ये कार्य कारण भाव नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने क्या क्या नियम के क्षेत्र को सीमित कर दिया, सीमित दायरे में कर दिया। तो अब दोष नहीं होगा न्यायिक के मत में, क्यों, क्योंकि चंद्र इव मुखम दृश्यते में और देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति में जो प्रथमांत पदार्थ है उसका आख्यातार्थ में अन्वय नहीं होता, तो वहाँ के लिए ये कार्य कारण भाव वाला नियम लागू नहीं होगा। यही बात कह रहे हैं कि चंद्र एव मुखम दृश्यते देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति इत्यादो इत्यादि वाक्य में चंद्र अक्त्वार्थयो हो, चंद्र अर्थ और अक्त्वा प्रत्यय का जो अर्थ है आख्यातार्थ अनन्वयात, आख्यात के अर्थ में इन दोनों का अन्वय नहीं होता है। कहाँ होता है, तो चंद्र का जो है इव पदार्थ में अन्वय होता है और भुक्त्वा जो है उसका व्रजति क्रिया में अन्वय, क्रिया में अन्वय होता है। तो यह जो है इतर में विशेषण है, इतर में विशेषण है मतलब इतर कहते हैं अन्य को, तो चंद्र पदार्थ जो है वह इतर पदार्थ में विशेषण है माने इव पदार्थ में विशेषण है, और देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति में भुक्त्वा पदार्थ जो है वह व्रजन क्रिया पदार्थ में अन्वित होता है। तो यह इतर का विशेषण है, जहाँ इतर का विशेषण होता है आख्यातार्थ का विशेषण नहीं होता है वहाँ के लिए ये नियम नहीं है। इस तरह से न्यायिक लोग समाधान तो कर देते हैं कि हमारा नियम उसी के लिए है जहाँ पर आख्यातार्थ में प्रथमांतार्थ का अन्वय होता है, जहाँ पर दूसरे में प्रथमांतार्थ का अन्वय होता है जैसे चंद्र इव मुखम दृश्यते में इव पदार्थ में प्रथमांत पदार्थ जो है चंद्र पदार्थ का अन्वय हुआ है, तो वहाँ के लिए नियम नहीं है। ऐसे देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति में भुक्त्वा पदार्थ का अन्वय क्रिया में हो रहा है आख्यातार्थ में नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ये नियम नहीं है। तो ये लोग अपने कार्य कारण भाव में इतरा विशेषणत्व तो लगा देते हैं, माने इतर में जो हाँ विशेषण न हो आख्यातार्थ में ही जहाँ विशेषण हो उसके लिए ये नियम है। इस तरह से समाधान करते हैं, उस पर वैयाकरण कहते हैं इति अति गौरवम, ताकि ये तो अति अत्यंत गौरव हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि आपने पहले कार्य कारण भाव बनाया उसमें क्या किया इतरा विशेषण लगा दिया, माने इतर में जो विशेषण न हो ऐसे प्रथमांत अर्थ में संख्या का अन्वय होता है, इस तरह से गौरव हो जाएगा माने बोझा हो जाए, गौरव का मत भार बोझा। तो इस तरह आपके कार्य कारण भाव में गौरव है माने ज्यादा बोझा पड़ जाता है, और हमारे में इस तरह से जो है ना जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, सीधे से ही काम चल जाता है कि आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधम प्रति आख्यात जन्य कर्त कर्मोपस्थितिर हेतु। और आपको क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, कैसे जोड़ना पड़ा, तो इन्होंने कहा था ना आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधे प्रथमांत पद जन्योपस्थितिर हेतु, इसमें प्रथमांत पद से पहले इनको जोड़ना पड़ेगा इतरा विशेषण, तो इसको जोड़ करके क्या हो जाएगा कि आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधे इतरा विशेषण प्रथमांत पद जन्योपस्थितिर हेतु। इस तरह से इनका जो कार्य कारण भाव है वह लंबा है, इसमें गौरव होता है, इसमें ज्यादा कहना पड़ता है, इसलिए ये बात सही नहीं है। आगे कहते हैं इदम अपि कर्त्र कर्मणो हो आख्यातार्थत्वे मानम इति स्पष्टम भूषणे, भूषण नाम के ग्रंथ में पहले भी मैंने बताया था ना कि दो तरह के भूषण ग्रंथ हैं, एक जो आप पढ़ते हैं वो है वैयाकरण भूषण सार, और एक इससे बड़ा भूषण ग्रंथ है सेम राइटर का, उसका नाम है बृहद वैयाकरण भूषणम। तो उस ग्रंथ में ये बताया गया है कि इदम अपि मानम, इदम अपि मानम माने प्रमाणम, यह भी प्रमाण है कि आख्यात का अर्थ कर्ता कर्म होता है, क्यों, क्योंकि अगर आख्यात का अर्थ कर्ता कर्म न हो तो जो कार्य कारण भाव बनेगा ना, उस कार्य कारण भाव में गौरव होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर संख्या के बारे में विचार संपन्न हुआ कि संख्या जो है किसका विशेषण बनता है। तो व्याकरण के मत में कर्तृवाच्य में कर्ता का विशेषण होता है, कर्मवाच्य में कर्म का विशेषण होता है, और नैयायिकों के मत में संख्या जो है प्रथमांतार्थ का विशेषण होता है और प्रथमांतार्थ विशेष्य होता है। और इसी मान्यता के आधार पर दोनों का कार्य कारण भाव अलग अलग हुआ। व्याकरणों के मत में कार्य कारण भाव हुआ आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधम प्रति आख्यात जन्य कर्तिकर्मोपस्थिति हेतु, और नैयायिकों के मत में कार्य कारण भाव हुआ आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधे इतरा विशेषण प्रथमांत पद जन्योपस्थिति हेतु। इस तरह से संख्या के संबंध में, संख्या में कैसे विशेष विशेषण भाव होता है, इस संबंध में यहाँ पर विचार संपन्न होता है ग्रंथ में। अब जो है काल की बारी है कि काल किसका विशेषण होता है, उसमें कैसे विशेष विशेषण भाव होता है, तो वह विचार हम अगले पाठ में करेंगे। आज यहीं रखते हैं।